बोलो साई साई राम, बोलो जय जय शिरडी धाम।
श्री साई बाबा अंतर्यामी थे, वो भक्तों के मन की बात पहले ही जान लिया करते थे। इस संदर्भ में हिमाड पंत ने एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि नाना साहिब चंदोरकर श्री साई बाबा के अनन्य भक्त थे और खान देश में नंदूरबार के मामलातदार थे। एक बार उनका स्थानांतरण पंडरपुर हो गया। पंडरपुर का इस धरती पर वही महत्व समझा जाता है जो महत्व वैकुंठ का है। श्री साई बाबा की अनन्य भक्ति का ही फल था कि चंदोरकर को पंडरपुर में रहने का मौका मिल गया। नाना साहेब को वहां जाकर कार्यभार शीघ्र ही संभालना था, इसलिए उन्होंने किसी को भी कोई सूचना नहीं दी और शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने विचार किया कि वो पंडरपुर बाद में जाएंगे, पहले तो अपने पंडरपुर अर्थात शिरडी जाकर विठोबा अर्थात श्री साई बाबा के दर्शन करेंगे। इधर शिरडी में नाना साहेब के आगमन की किसी को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन श्री साई बाबा तो अंतर्यामी सर्वव्यापी थे, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाना साहेब शिरडी से कुछ दूर नीम गांव पहुंचे ही थे कि मस्जिद में बैठे श्री साई बाबा अपने भक्तों मालसापति अप्पा शिंदे काशीराम आदि से बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी एकाएक सभी मौन हो गए। इस मौन को तोड़ते हुए श्री साई बाबा अचानक ही बोले कि चलो चारों मिलकर भजन गाते हैं। इस समय पंडरपुर के दरवाजे खुले हैं। फिर वो प्रेम पूर्वक भजन गाने लगे। उस भजन का भाव ये था कि मुझे पंडरपुर जाकर वहीं वास करना है क्योंकि मेरे स्वामी यानी ईश्वर का घर वही है। पहले भजन श्री साई बाबा गाते, फिर भक्त उसकी पुनरावृत्ति करते। कुछ देर बाद ही नाना साहेब ने सब परिवार मस्जिद पहुंचकर श्री साई बाबा के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया। फिर बाबा से विनती की कि हे देवा, आप पंडरपुर पधारे और वहीं वास करें। लेकिन वहां उपस्थित भक्तों ने नाना साहेब को बताया कि बाबा का भाव तो पहले से ही ऐसा ही था, अतः प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी। भक्तों के मुख से ऐसा सुनकर नाना साहेब भाव विह्वल होकर श्री साई बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। बाद में बाबा से आज्ञा ली व आशीष लेकर वो पंडरपुर के लिए सपरिवार प्रस्थान कर गए। इस तरह श्री साई बाबा अनंत सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी है और उनकी कथाएं अनंत हैं।
बोलो साई साई राम, बोलो जय जय।